तन्नो मित्रः सन्नो भवत्वयः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु गुरुः समः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं सत्यं तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपादवन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये बोलो काशी विश्वनाथ भगवान
की जय
भागवत भगवान
की जय
व्यास जी महाराज
की जय
सुखदेव जी महाराज
की जय
प्रेमपुरी जी महाराज
की जय
सद्गुरुदेव भगवान
की जय
कृष्ण कन्हैया लाल
की जय
ओम नमः
पार्वती पते हर हर महादेव
परमात्मा की
अहेतु कृपा। परमात्मा के परम कृपा से हम सब लोग उस तत्व का ध्यान कर रहे हैं, उस तत्व के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं जिसको भगवान वेदव्यास जी ने सत्य कहा, सत्यम परम धीमहि। उसी एक सत्य का ही ये संपूर्ण संसार है। जगत में सत्य न हो तो कुछ भी नहीं है, और सत्य है तो वो परमात्मा है, उसकी समस्त चर्चा उसकी चल रही है। बहुत अच्छी बात है कि श्रोतागण जिज्ञासु है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहा और कुछ सुन लिया। आज एक प्रातः काल आपके ही इसमें से एक श्रोता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जो परमात्मा ने जो मूल जो परमात्मा है जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ, और उन्होंने जो भागवत श्रवण कराई, कल आप लोगों ने संक्षेप में श्रवण किया होगा चतुश्लोकी भागवत, थोड़ा विषय पीछे छूटने पर भी अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है सुनना है तो हमारे यहां तो यही है कि ये जो हम सत्संग करते हैं अपने समझने के लिए करते हैं, और समझ करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए करते हैं, और अपने जीवन में उतार करके उसको यथार्थ रूप से हम उसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं। यही सत्संग का यथार्थ है, और किसी भी विद्या का यथार्थ ये है कि आप विद्या को आप पहले श्रवण करो, उसको पचाओ, और उसके बाद में दूसरे को कहो। ये हमारी परंपरा है। जो प्रश्न आया कि चतुश्लोकी भागवत क्या है, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये जो चतुश्लोकी भागवत, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सबसे पहले भगवान ने श्रवण कराई। भगवान कहते हैं कि इस जगत के पहले मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, ये पंचभूत ये कुछ भी नहीं था, ये सृष्टि ऐसी दिख रही है जैसे दो चंद्रमा दिखते हैं ना, और इस संसार में जो कुछ देखने में आ रहा है अन्वय और व्यतिरिक्त रूप से मैं ही हूं। अन्वय का मतलब होता है कि जिसके बिना कुछ नहीं है, सत्य वस्तु के बिना कुछ दिखता नहीं है, और जब सत्य वस्तु नहीं होती है तो पहले ही मंत्र में इसका सार भी आया हुआ है। ऐसी चतुश्लोकी भागवत इसका विस्तार पूर्वक कहा जा सकता है, परंतु भगवान का एक ही आदेश है, उपदेश है कि मेरे अतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं है। ये उस चतुश्लोकी भागवत का सार है। ब्रह्मा जी ने उसी आधार पर सृष्टि की रचना की, और परमात्मा ने आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो। श्रीमद् भागवत हमारा और आपका सबका अपना ग्रंथ है। उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं, अन्य शास्त्र भी हैं, अन्य पुराण भी हैं, परंतु जितनी हमारी और आपकी परमात्मा के विषय में यहां पर चर्चा की गई है अन्य ग्रंथों में कम देखने को मिलती है। जो परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि का निर्माण करके अपने समान ही अपने जीवों को बनाया, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया इस सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाओ। बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद में उन्होंने विचार किया कि अलग अलग प्रकार से सृष्टि बनानी चाहिए। अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई परंतु उनको संतोष नहीं हुआ। फिर अंत में उन्होंने 10 ऋषियों को अपने से प्रकट किया। उसमें एक कर्दम ऋषि भी थे, और उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम ऋषि जी ने अनंत काल तक भगवान का तप किया, और तप करने के बाद में भगवान स्वयं प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो कामना है वो सफल हो। हम लोगों का यही होता है कि हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई कामना होती है। और संसार कामनामय संसार है। जहां पर त्रिगुणात्मक होता है, जहां तीन गुण होते हैं, वहां पर कोई ना कोई कामना बनती है। बड़ी सुंदर बात है कि अपने भीतर जो कामना होती है उसी का फल होता है विस्तार। तो ये कामना ये थी कि मैं अपने आपके समान मेरा पुत्र हो। कर्दम ऋषि जी ने ये जो कामना की और अनंत काल तक उन्होंने तपस्या की, तपस्या का फल ये हुआ कि उनको भगवान की प्राप्ति हुई। और प्राप्ति होने के बाद में विदुर जी यही प्रश्न वहां पर पूछते हैं, स्वयंभ मनवश्य मनोय वश्य परमः समतः कथ्यतां भगवतां यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। जो हम और आप जैसा जन्म होता है इसका पूछते हैं कि ये कहां से प्रारंभ हुआ। पहले मानसिक सृष्टि हुआ करते थे। पहले सृष्टि होती थी, ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि की, मानसिक सृष्टि, इतने हो जाए, उतने हो जाए, उतने हो जाए, वहां पर कुछ मन की सृष्टि। परंतु हम लोग मानव हैं, मानव की सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, इसका प्रश्न करते हैं विदुर जी। और उसका उत्तर देते हैं मैत्रेय जी। ये विदुर और मैत्रेय का संवाद है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कहा गया कि आज विदुर और मैत्रेय का संवाद प्रारंभ किया जाएगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहसा नाम समाशः। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। पहले का काल अलग होता था, बहुत काल तक तपस्या करते थे। और उस समय उन्होंने तपस्या के बल पर परमात्मा को प्राप्त किया। परमात्मा ने उनको यथोचित वरदान प्राप्त किया और फिर से पुनः एक कुटिया बना करके कर्दम जी महाराज अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। और यहां पर मनु जी महाराज और शत्रुपा की तीन कन्या है, आकुति, दिहुति और प्रसूति। ये हमारे पूर्वज है। ये आप समझना कि हमारे पूर्वज हैं। हम कथा किसकी श्रवण कर रहे हैं, हमारे अपने पूर्वजों के लिए यहां पर कथा, यहां पर जो रखी हुई है ये पारायण रखा हुआ है। परंतु हमारे वास्तविक पूर्वज कौन है, आकुति, देहूति, प्रसूति, ये तीन माताएं और हमारे महापुरुष जो मनु के पुत्र हुए, एक उत्तानपाद और प्रियव्रत, यही हमारा मूल है। ऐसी मूल की कथा कहने के लिए यहां पर हम लोग बैठे हैं। कर्दम जी महाराज विराजमान हैं और शत्रुपा और मनु जी महाराज अपने एक कन्या को लेकर के, नाम को भी सुना होगा, कर्दम जी ऋषि बड़े विद्वान हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े तेजस्वी हैं। तो कन्या के मन में उनके प्रति आसक्ति जगी। देखो प्रेम कहां जगता है, जब हम लोग किसी के बारे में श्रवण करते हैं, किसी को देखते हैं, तो प्रेम का उदय होता है। प्रेम का उदय हुआ, श्रवण करने के बाद में गुणों का श्रवण हुआ, उनके रूप का श्रवण हुआ, उनकी विद्या का श्रवण हुआ और उसे मन में उनके एक प्रेम का अंकुर अंकुरित हुआ। प्रेम विशुद्ध होता है। प्रेम में विकार कब आता है, जब उसमें अंदर वासना प्रकट होती है। प्रेम कब वो इस प्रकार का होता है, जब उसके अंदर वासना आती है। परंतु वासना से पहले प्रेम, प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम को आप अन्यथा नहीं मानना। प्रेमैक रूपेण भगवान ने कहा, भक्ति कहा कि प्रेम रूपा भक्ति जो है प्रेम स्वरूप है। तब देहूति के मन में जब कर्दम्ब ऋषि के प्रति एक प्रेम जगा, तो उस देहूति को लेकर के मनुजी महाराज शतरूपा तो कर्दम्ब ऋषि के कुटिया पर आते हैं, और कुटिया में आने के बाद में अपने रथ को बहुत दूर छोड़ दिया, और रथ को दूर छोड़ करके कर्दम्ब ऋषि के पास कुटिया में मनुजी महाराज आते हैं अपने कन्या के साथ में। और मनुजी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, ये आप हमारी कन्या जिसका नाम देहूति है, ये आपके प्रति असक्त हो गई है, आपको इसने अपना मन समर्पित किया है, और हम भी चाहते हैं कि इसका विवाह आपके साथ में हो। कर्दम्ब ऋषि ने कहा कि मैं भी ये चाहता था, परंतु मेरी एक शर्त है, मेरी ये शर्त ये है कि जब मेरा विवाह हो, संतति हो, मैंने भगवान से इतना मांगा, मुझे ब्रह्मा जी का आदेश था कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है, मैंने तपस्या की, और तपस्या के बाद में मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे संतति हो, जब मेरे घर में संतति उत्पन्न होगी तो मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, अगर ये आपको स्वीकार है तो आपकी कन्या मुझे दे सकते हैं। मनुजी महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हमारी जो पुत्री है वो आपकी सेवा करेगी। और इस प्रकार वहां पर प्रथम इस मानव लोगों का पहला विवाह वहां पर होता है। प्रथम विवाह में बहुत तामझाम नहीं है, ना बैंड बाजा है, ना कोई बड़ी बारात है, माता पिता है, पुत्री है, और वहां पर वरदेव है, चार ही लोग हैं। इसको कहते हैं कि ब्राह्मण विवाह। हमारे यहां पर आठ प्रकार के विवाह होते हैं, आठ प्रकार के विवाह बोलते हैं कि पहला ब्राह्मण विवाह, पिता अपने पुत्री को लेकर के उस वरराज के पास में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करे, और विधि विधान से होने वाला वो जो विवाह है उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं, अपनी परंपरा है। उस ब्राह्म विवाह करने के लिए वहां पर ब्राह्म विवाह के पद्धति से ब्राह्म विवाह है, देव विवाह है, हर्ष विवाह है, उसके बाद में यहां पर प्रजापति विवाह है, आसुर गंधर्व पिशाच राक्षसी अलग विवाह, आठ प्रकार के हमारे विवाह है। विवाह एक परंपरा है ना जी, राक्षस विवाह है, राक्षस विवाह भी होता है, जो रुक्मिणी जी को बाद में पता लग जाएगा आपको कि रुक्मिणी जी को हरण करके लाए थे वो राक्षस विवाह, किसी का हरण करके ले जाए तो भी अपने यहां पर राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह भी है, इस प्रकार के आठ प्रकार के विवाह है। परंतु यहां पर विवाह होता है ब्राह्म विवाह है, कन्या को पिता अपनी पुत्री को ले आते हैं और ऋषि को अर्पण करते हैं और विवाह होता है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में महलों में पली हुई सुकुमार कन्या जिसका नाम देहूति है, और जहां पर विवाह किया गया है एक कुटी सी छाई हुई है, छोटी सी कुटी बनी हुई है, उसमें ना कोई बड़े बड़े पलंग है, ना उसके अंदर कोई विशेष सुविधा है, और वहां पर प्रदान करने के लिए वो देहूति को लाए हैं। और उस समय जब प्रस्थान करने लगी है माता और पिता, जब प्रस्थान करते हैं तो अपने यहां पर होता है कि हमने बचपन से पाला है, बचपन से पोसा है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, और जब उसको अपने दिल के टुकड़े को जब हम लोग उसको अलग करने लगते हैं, उन माताओं के हृदय में जो व्यथा होती है, जो उनके भाव होते हैं, पहले देखने में आता था। यहां पर भी कहते हैं कि जिस समय अपने पुत्री को प्रदान किया, उसका विवाह किया ऋषि के साथ में, और वो माता पिता उस समय मां ने उसके गले लगाया, और इतने अश्रुपात हुए, इतने अश्रुपात हुए बोलते हैं देहूति के सब बाल भीग गए, और उस समय उन्होंने एक दूसरे से विदाई ली, और मनुजी महाराज और शत्रुपा अपने स्थान पर चले जाते हैं, और देहूति सेवा में लग जाती है कर्दम्ब ऋषि के, और कर्दम्ब ऋषि के आश्रम में आकर के खूब सेवा में लगती है, अब कैसी सेवा करती है। हम लोग थोड़ा सा एक संकीर्तन करने के बाद में उस कैसा उनका गृहस्थ आश्रम कैसा रहा उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
पर राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय
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 कण बाकी बिहारी नंदलाला की जय जय
बाके बिहारी जय
बाके बिहारी नंदलाला की जय जय
बाके बिहारी
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा
रमण हरि गोविंद
बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
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 परवा के बिहारी नंदलाला की जय जय
बाके बिहारी
बाकी बिहारी नंद लाला की जय जय
बिहारी
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
गोविंद हरि गोपाल बोलो
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
पण राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कौरव कोविदा नित्यं परिचरित्वा भवानीव भवं प्रभुं माता पिता लौट गए अपने स्थान के लिए और माता देहूति अपने पतिदेव कर्दम ऋषि के आश्रम में वहां पर उनकी सेवा में लगे। यहां पर भागवतकार लिखते हैं मैत्री जी महाराज कहते हैं कि नित्य सेवा उनको क्या चाहिए, पूजा के लिए क्या चाहिए, बैठने के लिए कौन सा आसन चाहिए, स्नान के लिए कौन सा जल चाहिए, पुष्प कौन सी चाहिए, माला कहाँ रखी है, छोटी सी कुटिया है वहां पर सेवा में लग गई। यहां पर उपमा देते हैं जैसे भवानी शंकर जी के सेवा में लगी थी उसी प्रकार भवानी नीव भवम प्रभुम, जैसे भवानी पार्वती शंकर जी के सेवा में लगी हुई थी इसी प्रकार माता देहूति कर्दम ऋषि की सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते ग्रस्त आश्रम प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, केवल वो परमात्मा की ही बातें वाला ग्रंथ नहीं है, इसके अंदर तो ग्रस्त धर्म के लिए भी बहुत सी बातें लिखी है। ग्रस्त धर्म कैसा होना चाहिए, बड़ा सुंदर यहां पर एक श्लोक आया है। उस देहूति माता ने सेवा कैसी शुरू की और क्या करना चाहिए, विवाह होने के पश्चात हमारे यहां पर वैदिक पद्धति से क्या होना चाहिए, हमारे सनातन परंपरा के हैं क्या है, यहां पर एक श्लोक में बतलाया। विश्रम्भेन आत्मशौचेन, ग्रस्त आश्रम कैसा होना चाहिए, विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेन दवेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भो। ग्रस्त आश्रम चलाने के लिए सबसे पहले आपस में परस्पर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले ग्रस्त आश्रम का जो नियम है वो तो क्या है, पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए। विश्रम्भेन, बिना विश्वास का काम नहीं चलेगा, क्योंकि कन्या कहां से आई है, पति कौन है, अद्भुत ये लीला है भगवान की, इसको समझना बड़ा कठिन। अपने यहां पर कन्या का जन्म कहां होता है, इसीलिए अपने यहां पर विवाह में आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं अक्षत डालते हैं, अक्षत डालते हैं ना, अपने यहां पर परंपरा है। अब कोर्ट मैरिज होता है वो बात अलग है, वहां डालते हैं कि नहीं डालते हैं, परंतु अपने यहां पर अक्षत डालने की परंपरा है और वहां पर मंगल क्या बोलते हैं, कुछ मंगलाष्टक बोलते हैं ना, एक आध बोलो ना, एक हमारे आचार्य जी एक श्लोक बोलेंगे सुंदर।
रामो राजमणि सदा विजयते, राम रमेशं भजे, रामेण विहता निचाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। राम शरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चेदयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर शिवमङ्गल
बाद में सावधान भी कर देते हैं अब तुम्हारी सावधान हो जाओ कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो और उसके अंदर सब लोग बैठते हैं अक्षत देते हैं अक्षत का मतलब होता है कि जो हमारे यहां धान होता है एक धान होता है जिसको हम लोग चावल कहते हैं उसको जब रोपा जाता है जैसे गेहूं तो हम लोग बो देते हैं और चीजों को बो देते हैं परंतु चावल जो धान होता है उसको कैसे लगाते हैं एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह लगाते हैं तब वो फलित होता है तो इसी प्रकार एक कन्या अपने पति के साथ में वहां पर जाकर के वहां पर उनके साथ में उनको रखा जाता है और वहां पर वो फलती और फूलती है उसके अनेक सुंदर सुंदर उसको पुष्प और फल लगते हैं परंतु कब विश्रम्भेन एक दूसरे के साथ में विश्वास हो और केवल विश्वास नहीं आत्म शौचेन शुचिता पवित्रता होनी चाहिए जीवन में क्या होना चाहिए पवित्रता भी होनी चाहिए अपवित्र होकर के जीना नहीं है अपवित्र होकर के आपको संसार करना नहीं है अपवित्र होकर के आपको अपना दाम्पत्य जीवन चलाना नहीं है विश्वास के साथ साथ में पवित्रता होनी चाहिए और साथ उसके साथ में गौरवेन अपना गौरव होना चाहिए हम लोग देखते हैं ना पत्नी जब पति के घर आती है अपना गौरव रखती है मैं किस कुल से आई हूं कभी कभी हम लोग संवाद देखते हैं कभी पढ़ते हैं किसी को अविश्वास होता है तो वहां पर अपने परिवार का अपने पूर्वज का वहां पर वो अपना हो देती है और कहती है कि मैं उस खानदान से आई हूं वो गौरवपूर्वक कहती है दमेन च और साथ साथ में नहीं कि जल्दीबाजी नहीं दम श्रम दम होना चाहिए जीवन में ये हमारी पुरानी परंपरा है आज रही कि नहीं रही बात अलग है अब तो आजकल तो नाम लेने की प्रथा हो गई है अरे नाम लो तो ठीक है कभी कभी ऐसा मैं सुनता हूं ए आओ नहीं जरा क्या हम सांभ तो नहीं ऐसे सुनने में आता है आप लोग भी सुनते होंगे आप बोलते हैं कि पता नहीं वो मुझे हमने सुना नहीं किसी को बोलते हुए किसी किसी का सुना है मैंने लेकिन प्रायः ऐसा हो गया है पहले के समय में पति का नाम पत्नी नहीं लेती थी और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता था वो भाग्यवान कहके पुकारते थे नहीं ये हमारी मूल परंपरा है अद्भुत परंपरा है गौरव होना चाहिए और साथ साथ में इसके भीतर आपको दमन आपने इंद्रियों का दमन करना चाहिए कि अभी जल्दीबाजी नहीं है जब पतिदेव जब समय आएगा तो सब कुछ होगा शुश्रूषिया सौहृदेन सेवा भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति सेवा भाव तो यहां तो अपने भारत में अब तो यह है कि पत्नी सेवा करे पति कुछ न करे परंतु परदेश में ऐसा होता है कि पति भी पत्नी की सेवा करे और पत्नी भी पति की सेवा करे पता नहीं वहां कैसे गुण चला गया बहुत अच्छी बात है तो यहां पर लिखा ये श्रीमद् भागवत में लिखा वो मैं कह रहा हूं शुश्रूषिया सुहृदेन एक बार मैंने देखा था एक ऐसा नहीं कि सब ऐसे होते हैं हम लोग एक बार यात्रा पर थे और उनके हमारे साथ में एक परिवार था बड़े अच्छे सुशील परिवार और जो उनको उनकी पत्नी थी पत्नी है मतलब थी नहीं है वो साथ में यहां पर बैठे हुए हैं और वो तलब हो गई चाय पीने की तो पति देव गए कहीं से चाय बना करके लाए और उनको संतुष्ट किया ये है सेवा भाव ये परस्पर एक दूसरे के प्रति एक मानना एक ने कही दूसरे ने मानी नानक कहे दोनों ज्ञानी ये होना चाहिए शुश्रूषिया सौहृदेन और सौहार्द होना चाहिए। सौहार्द का मतलब मित्रता। पति पत्नी पति पत्नी नहीं है, वो आपके साथी है, जीवन साथी है, संपूर्ण जीवन में रहने वाले हैं। और कैसा व्यवहार होना चाहिए? मित्रता पूर्वक। परंतु मित्रता कैसी हो? वैसी नहीं, टू तलाक वाली नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक। अब युग है, उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि शादी वैसी होती है, विवाह वैसे होते हैं और समय बदल गया है। परंतु ये मूल हमारी परंपरा ये है। और वाचा मधुरयाच हो, वाचा कैसी हो? दुनिया में जितने काम बिगड़ते हैं वो किससे बिगड़ते हैं? वाणी से। अगर वाचा में मधुरता हो, सरलता हो, सहजता हो, मिठास हो, कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप एक दूसरे का समझ करके अगर चलते हैं तो वाचा कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। वाचा कहते हैं कि वाचा मधुरया प्रिय वाक्यन प्रदानेन, तो क्या होता है? आप अगर किसी अच्छी बात बोलो, मीठी बात बोलो, हमारा शास्त्र भी कहता है प्रियम ब्रूहियात, सत्यम ब्रूहियात। क्या बोलते हैं? सत्यम ब्रूहियात, प्रियम ब्रूहियात। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूहियात सत्यम प्रियम। अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य हो परंतु अप्रिय नहीं होना चाहिए। ऐसी वहां पर वाचा मधुराज भोग कहते हैं कि इस प्रकार का वाचन करने से, इस प्रकार से बोलने से, वचने किम दरिद्रता, वचन में दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार वहां उनका विवाह होने के पश्चात अपना उनका गृहस्थाश्रम चला। कहते हैं कि ये सात गुण हैं गृहस्थाश्रम के, ये हमारे मूल सात गुण हैं। और सात यहां पर उसके ग्राह्य गुण और त्याज्य दोष भी है। विसृज्य कामम दंभंच, उसमें भूल जाना चाहिए। भूलने के लिए ये सात वस्तु है, काम है, दंभ है और द्वेष है। अनेक कामना होती है तो वो भी ठीक नहीं है। उसके साथ में दंभ हो, होता है कभी कभी दंभ होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन कभी कभी बिखर जाता है। कोई पैसे वाले घर से कोई पढ़ी लिखी बेटी आ जाती है, आजकल ये थोड़ा सा असंतुलन हो गया है, बेटियां ज्यादा पढ़ती हैं। और फिर हमारे सरकार के सरकारी बोलती बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो पहले से पढ़ रही है, बेटों से ज्यादा बेटियां पहले से पढ़ रही है। अच्छी बात, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसका दंभ हो जाता है। दंभ नहीं होना चाहिए, दंभम द्वेष नहीं होना चाहिए, और लोभ नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोभ न होना चाहिए। अति लोभ हो न कर्तव्य, लोभो नहीं वह परित्यजेत, अधिक लोभ भी नहीं करना चाहिए और लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। दोनों बातें कही है। क्या कहा? अति लोभो न कर्तव्य, लोभम नहीं वह परित्यजेत। लोभ का अगर बिल्कुल आप सर्वथा उसका त्याग करोगे तो आप संसार में नहीं रह पाओगे। परित्याग किसको करना चाहिए? जो विरक्त है, जो सन्यासी है, जो बिल्कुल जिसको किसी से कोई पड़ी नहीं है, उसको संपूर्ण त्याग करना चाहिए। परंतु सदग्रस्त को संपूर्ण त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहता है। इस प्रकार का दंभ नहीं होना चाहिए और उस प्रकार लोभ अभोग मदम पाप नहीं होना चाहिए, भीतर पाप नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ में मद नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की नित्य सेवा कर रही है होती मैया, और सेवा करते 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 उनकी काया बिल्कुल सूख गई, कृष्ण काया हो गई। और वो देख करके कर्दम ऋषि को थोड़ी दया आई, करुणा आई, ये तो राजपुत्री है और राजपुत्री यहां करके हमारे सेवा में लगी हुई है, इसको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। और उस समय उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे सेवा से मैं संतुष्ट हो गया हूं, और अब तुम मांगो क्या मांगती हो? देवती ने कहा कि भगवान आप सब जानते हैं, और जानते हैं इसलिए आपको मैं क्या बताऊं, उसी समय उन्होंने कहा कि इस कुटिया में तो कैसे निर्वाह होगा। उन्होंने एक संकल्प से सुंदर विमान बनाया। अब विमान का ऐसा वर्णन आया है कि वो अद्भुत विमान हुआ, जिसमें विमान तो क्या था, वो तो पूरा राजमहल था। उस महल में अनेकों कक्ष थे, सुंदर सुंदर उसके अंदर पलंग लगे हुए थे, और केवल इतना ही नहीं, उसके भीतर सरोवर था, उसके भीतर बगीचे थे। ऐसा विमान तो आजकल कोशिश लोग कर रहे हैं, आजकल आए विमान में ये भी कोशिश। आजकल लोग सुनते हैं कि कोई कोई विमान में कुछ होता है, लेकिन उसको वो नहीं हो सकता। बगीचा कहां से लाएंगे, वहां पे दो फूल रख देंगे जो नीचे से कहीं से आए हुए खरीदे हुए दो पुष्प रख सकते हैं, परंतु यहां पर पूरा बगीचा लगा हो, जहां पर सुंदर बगीचे हो, वहां पर सुंदर उपवन हो, सरोवर हो, और साथ साथ में वहां पर उन्होंने संकल्प से 1000 दासियां भी वहां पर उत्पन्न हुई। और सुंदर होने के बाद में, ये सब होने के बाद में, अनेक रत्नों से वो सजा हुआ विमान है। और देवती माता को कहा कर्दम ऋषि ने, जाओ देवी इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही सरोवर में स्नान करने गई, उस समय वहां से जो यौवन था, जैसे विवाह से पूर्व, यहां पर भागवतकार लिखते हैं, जैसा विवाह से पूर्व उसका स्वरूप था, उसी प्रकार सुंदर स्वरूप देवती माता का हुआ। और फिर वो विमान में वो प्रवेश करती है, और वो विमान, उस समय उस विमान को रनवे की जरूरत नहीं थी, जहां चाहे वो उड़ सकता था। और फिर वहां से आकाश मार्ग से संपूर्ण जगत में, कहते कहां कहां गया, कौन से पर्वत पर गया, संपूर्ण संसार में उसने भ्रमण किया। और भ्रमण करते 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 कहां सरोवर है, हिमालय है, मानसरोवर है, सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के पश्चात देखा कि अब देहूति के मन में इच्छा है कि संतान प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए जो गृहस्थ धर्म का पालन किया, और गृहस्थ धर्म के पालन करने के बाद में देहूति माता और कर्दम ऋषि से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। प्रथम कन्या का ही सम्मान है, कन्या ही उत्पन्न होती है, वही माता है। इसलिए वेदों ने भी शायद इसलिए कहा होगा मातृदेवो भव, है ना? हमारा वेद क्या कहता है, पहले पितृदेव भव नहीं कहा, मातृदेवो भव। वो जननी है, इस जगत को दिखाने वाली है, इसलिए शायद सम्मान है। इसलिए वहां पर माता जो देहूति है उनके द्वारा और कर्दम ऋषि के द्वारा उस समय 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कला है, अनुसया है, श्रद्धा है, हरिविभू है, गति है, क्रिया है, ख्याति है, अरुंधति है और शांति, ऐसी 9 कन्याओं का उनका जन्म हुआ। मन में आया देहूति माता के ये कन्या उत्पन्न हुई, और इन्होंने संकल्प किया था कि संतति होने के बाद में मैं कहां जाऊंगा, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं परिव्रजन करूंगा। तो पुनः देवती माता पतिदेव के पास में आती है और कहती है कि भगवान ये कन्याएं तो हुई है, परंतु इनका लालन है, पालन है, इनका विवाह है, ये मैं कैसे करूंगी। तो कदम इसने कहा कि ये भगवती तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूर्ण होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी चिंता मत करो, और उनका संपूर्ण रूप से विवाह कर दिया। मरीचि ऋषि के साथ में विवाह किया, पहले कला जो है अनुसया का विवाह अत्रि ऋषि के पास में साथ में किया, श्रद्धा अंगिरा को दी, हविर्भू को दिया, पुरुष महाराज को, गति पुलह को दी, कृतों को क्रिया दी, और भृगुजी महाराज को ख्याति दी, वशिष्ठ जी को अरुंधति दी, और अथर्वा ऋषि जी को उन्होंने जो शांति नाम की कन्या को प्रदान किया। उनका सुंदर बहुत भव्यता से विवाह हुआ, उनको विदा किया। और उस समय कहा कि देवती माता ने कहा कि भगवान मैं तो जिसके लिए तपस्या की थी उस समय में आप वो भी मुझे प्रदान करें। तो उस समय कहा कि पहले तप करो, अगर तुमको परमात्मा को चाहना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा। अनंत काल तक देवती माता ने भगवान के लिए तप किया। अपने यहां भी अभी भी माताओं में परंपरा है, जब कोई पुत्र नहीं होता है, कोई पीपल को जल चढ़ाएंगे, कहीं कुछ कहीं जाएंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे उस समय। इसी प्रकार उन्होंने भी बहुत काल तक भगवान की आराधना की, और आराधना करने के पश्चात कहते हैं कि तस्याम भूत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दवम वीरपापन्नो यज्ञेग्निरिवदारुणी। उस समय भगवान ने प्रथम कर्दम ऋषि के मन में प्रवेश किया। भगवान क्रम करते कर्दम ऋषि के मन में पहले प्रवेश किया और उनके द्वारा उनका प्रवेश ज्योति माता के गर्भ में हुआ, और उसके बाद में वहां पर ज्योति मां के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो कपिल भगवान की।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो यशोदा कोलाल मेरो यशोदा कोलाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
हरि बोल
मेरो गैया चरण तो ग्वाल मेरो गैया चरण तो ग्वाल
मेरो गैया चरण तो ग्वाल मेरो गैया चरण तो ग्वाल
मेरो गैया चरण तो ग्वाल मेरो गैया चरण तो ग्वाल
मेरो गैया चरण तो ग्वाल मेरो गैया चरण तो ग्वाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
हरि बोल गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे
गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल
गोविंद गोपाल
बोलो कपिल भगवान। कपिल भगवान का अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद में एक दिन की बात है, कर्दम ऋषि भगवान के पास चले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहु जन्म विपक्केन सम्यवियोग समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतः शून्यागारेषु यत्पदम्। भगवान हमारे यहाँ की परंपरा है, ज्ञान को महत्व देते हैं, ऐश्वर्य को महत्व देते हैं, श्रेष्ठता को महत्व देते हैं, यहाँ पर पिता अपने पुत्र के पास जाते हैं। ऐसे तो वो अलौकिक दृष्टि से कदम ऋषि पिता है और कपिल भगवान उनके पुत्र हैं। पिता पुत्र का संबंध होने पर भी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि यही ज्ञान का स्वरूप है। जो हम एक दूसरे को समझते हैं, जानना चाहिए कि ज्ञानियों की श्रेष्ठता यही है कि हम वास्तविकता को जानते हैं। वास्तविक अवस्था है क्या? तो यहाँ पर कहते हैं कि बहु जन्म विपक्केन, बहुत समय तक लोग समाधि लगाते हैं, तप करते हैं, और उसके बावजूद भी आप वहां पर नहीं जाते हैं। आपका आविर्भाव हमारे यहाँ पर हुआ है, हम जैसे ग्रस्त के घर में आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, हम बड़े ही प्रसन्न हैं। आपने उस समय आपने हमारी जो कामना थी उसको पूर्ण किया है। भगवान कहते हैं कि हे कर्दम जी, हे पिताजी, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके। मैं एक बार जो कहता हूं वही वचन होता है, वो सत्य होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होती है। जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, जो मुझे तुमने वरदान दिया था, उसी को पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। भगवान का जन्म कहाँ हो जाए? आपकी तपस्या हो, आपका अंतकरण निर्मल हो। भगवान का तब तक प्रागट्य नहीं होता है, चाहे वो लौकिक हो चाहे परलौकिक हो, जब तक आपके अंतकरण की निर्मलता नहीं होती है। भगवान का प्रागट्य कब होगा? भगवान कैसा है? भगवान अतिशुद्ध है, परम पवित्र है। भगवान से बढ़कर के पवित्र वस्तु जगत में है ही नहीं। सर्वशुद्ध अगर कोई वस्तु है तो क्या है? परमात्मा। और परमात्मा कहां प्रकट होता है? पहले अपने हृदय में प्रकट होता है। और परमात्मा को प्रकट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जहां पर बिठाना है वहां पर पवित्र करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? आपके घर में भगवान की छोटी सी पूजा होती है, होती है ना? है जो जिनके घर बड़े होते हैं तो उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, होती है ना? बहुत लोगों के घर में होगी। अपने लिए बढ़िया सुंदर सा बेडरूम बनाते हैं, भगवान को भी कोने में कहीं ना कहीं रख देते हैं। चलो कम से कम रखते तो है, सुबह उठ करके वहां पर जाकर दर्शन करते हैं। बहुत से लोग उनके लिए सुंदर एक कमरा रखते हैं, वहां पर ठाकुर जी की पूरी वहां पर प्रतिमा रखते हैं, उनकी रोज नित्य सेवा होती है, पूजा होती है। और कोई बाहर से व्यक्ति आता है, बाहर से कोई बालक आता है, घर वाला आता है, उसको वहां पर प्रवेश नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो पवित्र जगह है ना? पवित्र जगह जहां पर ठाकुर जी का निवास होता है, जहां पर भगवान का वास होता है, जो लौकिक होने पर भी है ना, साधारण हम समझते हैं कि भगवान तो व्यापक है, सर्वत्र है, हमारे पवित्र रखने से भी पवित्र रहेगा, न पवित्र होने पर भी वो पवित्र रहने वाला है। पवित्रा नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम, वो तो मंगल है ही, हमेशा ही मंगल है, वो कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी कहते हैं कि आप हमारे घर में आए हैं, और इसलिए भगवान ने कहा कि तुमने जो कहा था, तुमने तपस्या की थी, अपने अंतकरण को निर्मल बनाया था, इसलिए सबसे पहले तुम्हारे मैं अंतकरण में प्रकट हुआ हूं। अब ऐसा करो कि तुम्हारी जो कामना थी, पुत्र कहता है पिताजी को कि अब यहां से आप क्या करो, गच्छ कामम मया पृष्टो, अब मेरा आदेश है, मैं आपको बोल रहा हूं, और मैं संन्यस्त तत्कर्मणः, कहते हैं कि तुम संन्यास लो। और संन्यास किस लिए लेना चाहिए? यहां पर यह भी उसका मर्म बताया है, संन्यास किस लिए लेना चाहिए? जीत्वा दुजयम मृत्युः, मृत्यु को जीतने के लिए संन्यास लेना है। हम लोग मृत्यु को जीतने के लिए नहीं लेते हैं, हम लोग तो और कोई प्राप्त करने के लिए लेते हैं, परंतु यहां पर भगवान कहते हैं कि तुमको संन्यास के लिए किस लिए लेना है, ये जो संसार है प्रपंच है उसको धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उसको अपने मन से उसका बाध करना है। संसार वस्तु कुछ है ही नहीं, मन का एक संबंध है उससे आपको बाध करना है। जब आप निद्रा में होते हैं गहन निद्रा में, उस समय आपका संसार रहता है क्या? गहरी निद्रा पड़ी हो आपकी, आप कहां सोए हैं क्या कर रहे हैं आपको कुछ पता होता है क्या? जिस प्रकार उस समय आपकी अवस्था होती है उसी प्रकार संन्यास की अवस्था है, रहते हुए भी न रहना। इसलिए कहते हैं कि जाओ उस जो दुर्जयी, यहां पर दुर्जयी शब्द लिखा है, जीत्वा दुर्जयम, मृत्यु को मृत्यु से पार होना बहुत कठिन काम है। और अमृतत्वाय मा भज, उस अमृत तत्व के लिए मेरा भजन करो। ऐसा नहीं कि सबको संन्यास लेने की भगवान आज्ञा देते हैं, परंतु जो उनको अपना अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहते हैं, उनको भगवान कहते हैं कि तुम ये कर्म करो। और उसी समय मामात्म स्वयं ज्योति ही, अरे मैं ही स्वयं हूं यहां पर और मैं स्वयं प्रकाश हूं। मामात्मा स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम, परमात्मा कैसा है कहां है? वो स्वयं ज्योति है और सभी के जो कहते हैं कि हृदय के गुहा रूपी हृदय में उसका निवास है। हम भगवान के बिना जी नहीं सकते, परमात्मा के बिना हमारा जीवन हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि वहां पर जाकर के और वहां मेरा वहां पर अनुसंधान करो। भगवान वो शिक्षा दे रहे हैं और भगवान शिक्षा देने के बाद में उन्होंने ये एकांत में बातें हो रही थी, हमारे और आपकी बात ऐसी माइक पर और सब जगह नहीं हो रही थी, एकांत में पिता और पुत्र बैठे हुए थे और पिताजी को उपदेश दे रहे थे, कौन पुत्र दे रहा था और कहते कि संन्यास ग्रहण करो। और उसी समय मैत्री जी कहते कि जैसे ही कपिल जी का ये उपदेश हुआ और प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो, यहां पर लिखा है जो बातें यहां पर लिखी है उसी का थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। वहां पर कपिल भगवान विराजमान है और उनके पिताजी ने उनकी प्रदक्षिणा की, अब जा रहा हूं संन्यास ग्रहण करने के लिए। हमारे यहां जब संन्यास ग्रहण होता है उस समय विधि होती है, आजकल हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने एक विधि बताई, सब जगह अलग अलग विधि होती है, जैसे विवाह की विधि होती है वैसे एक संन्यास की विधि होती है, परंतु यहां पर भगवान ने आज्ञा दी संन्यास की। संन्यास जब ग्रहण करने के लिए सन्यासी जाते हैं उनके लिए प्रक्रिया होती है, और सन्यास के लिए कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सन्यास लेना बड़ा सरल है। एक बार बहुत पहले की बात है, अभी पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, एक बार शेयर बाजार बहुत डाउन चला गया था, पहले की करीब 30-40 साल पहले की बात है, शेयर बाजार एकदम नीचे आ गया था और उसमें एक व्यापारी सूरत का वो मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज मुझे संन्यास लेना है। मुझे पता नहीं था कि भाई ये क्यों लेना चाहता है, अच्छा उसकी आयु थोड़ी ज्यादा नहीं थी, उसने कहा कि मुझे संन्यास लेना है। हमने कहा भाई ऐसा है कि बंबई में संन्यास तो देते नहीं है, उसके लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। और उस समय कहा कि कैसे जाएंगे, तो हमने कहा कि ऐसा करता हूं यहां से एक महात्मा तुम्हारे संग लगा देता हूं और यहां से बाबा गाड़ी जाती है, बाबा गाड़ी का मतलब देहरादून एक्सप्रेस, उसमें आदमी जाते जाते हैरान परेशान हो जाता है। और पहले के समय में ऐसा होता था कि यहां से वो गोरा चिट्टा निकलता था, वहां पर वो लगता था कि अफ्रीका से आया हुआ कोई आदमी है, वो कोयले का इंजन भाप का इंजन धम 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 करते करते वहां जाता था। हमने कहा बाबा गाड़ी यहां से सीधी सीधी चले जाती है। उसने कहा कि ठीक है अच्छी बात है मैं कल आता हूं। उसके पास में एक सुंदर पार्कर पेन था, उसने कहा कि ये आप रखिए, आप इसका मेरे को कुछ कोई काम नहीं है। हमने कहा ठीक अच्छी बात है। एक महात्मा को मैंने उसके साथ में लगाया, उसकी टिकट हरिद्वार यहां से मुंबई से लेकर के हरिद्वार बना दी। और रात्रि के समय में यहां से 10 बजे गाड़ी चलती थी, उस समय रात्रि को 12 1 बजे के आसपास वो सूरत पहुंचे थे। अब पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, उस महात्मा को कहा कि महात्मा जी आप बैठे रहो, मैं थोड़ा जल लेके आता हूं। और वो जल लेने चले गए, उसके बाद में आए ने उसने कहा कि क्या ये संन्यास लेने का इसका मतलब ये नहीं कि जब श्मशान वैराग्य होने के बाद में, नहीं पहले आपको वैराग्य विवेक होना चाहिए कि हम संन्यास ग्रहण क्यों कर रहे हैं, हम गृहस्थ का त्याग क्यों कर रहे हैं। इसलिए आपने यहां पर कहा है पहले विवेक हो, सद और असत का विवेक होना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत है उसका विवेक होना चाहिए, उसके बाद में वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि इस जगत से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक संन्यास का कोई अर्थ नहीं है। और उसी प्रकार वहां पर कहा कि पिताजी आप संन्यास ग्रहण के लिए चले जाइए। और उस समय वो पुत्र की परिक्रमा करते हुए कर्दम ऋषि चले जाते हैं, अपने वन गमन करते हैं, और वहां उन्होंने भगवान का साक्षात्कार करते हुए उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया है। और सर पिताजी चले गए वन में, अब माता जी अकेली रह गई। और माता जी ने भी आकर के एक दिन कहा कि हे पुत्र, मैं अब इन विषयों को भोगते भोगते थक गई हूं, मुझे तुम अब कुछ उपदेश करो। पिताजी को उपदेश करके वन में भेज दिया। माता को तो भेज नहीं सकते हैं, माता का स्वरूप होता है, माता की कुछ अपनी मर्यादा होती है, उनको वन भेजने का हमारे यहां पर परंपरा नहीं है। होती है कोई कोई ऐसी गार्गी जैसी कोई विदुषी होती है, वो घर में रहकर सन्यासी होती है, परंतु अपने यहां पर मर्यादा है कि माताओं को घर में रखा जाता है। और जो कपिल भगवान का जन्म हुआ था वो माता को उपदेश देने के लिए हुआ था, उनकी जो उनको उनकी परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए हुआ था। तो माता ने कहा कि कपिल, अब मैं थक गई हूं इस संसार में सांसारिक भोगों से, कि ये जो भोग है इसका हम भोग नहीं करते, जो भोग हमारा भोग करते हैं। इस प्रकार की बातें कहते हुए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहां पर हूं। और उस समय भगवान ने कहा कि हे माता, तुमको योगा आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रय से साय में अत्युंतु परितम दुखम दुखस्य सुखस्य च। हे माता, योग आध्यात्मिक पुंसा, आध्यात्मिक योग का तुमको आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कि आध्यात्मिक योग क्या है, तो कहते हैं कि आप ये जगत में परमात्मा है, परमात्मा का ही ये जगत है, इस प्रकार की आपकी आप ये संसार से निवृत्त हो जाओ। और उस समय परंतु इस संसार में हमारा मन लगा रहता है। कबीर भगवान कहते हैं चेत्वः खल्वस्य बंधाय, जो मन है मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः। यहां पर उन्होंने थोड़ा सा शब्द का थोड़ा सा अंतर किया है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मेरा मत है, हम किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं और अपना मानने के बाद में उससे मोहित हो जाते हैं। संसार का स्वरूप ही है, संसार नाम की वस्तु इतनी है, हम जिसको मान लेते हैं उसके साथ हमारा मन से संबंध हो जाता है। आप किसी बैंक में जाओ और वहां पर नोटों की थप्पियां लगी रहती है, उसमें आपको कभी मन होता है कि ये मेरी है या उसको मैं घर में ले जाऊं, क्यों नहीं है, क्या कारण है? उसके आपके मन से संबंध नहीं है। अब हम लोग पेडर रोड पर चलते हैं, है ना, कितने सुंदर सुंदर बंगले हैं, एक और एक आता है एक बंगला, कभी वो लगता है आपको उसमें जाऊं और मैं चाय पीऊं? और वहां से लेकर के यहां तक सुंदर सुंदर बड़े बड़े मकान हैं, कभी लगता है कि उसमें जाकर के उसमें हमारे मधुसूदन जी का भी एक अलग से एक वहाँ पर फ्लैट होगा, हमारे प्रकाश भाई का भी है, हमारे इधर बैठे गिरीश भाई है, सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सबके अपने अपने मकान है। परंतु आपको दूसरे मकान में जाकर के किसी नौकर को डांटने का मन होता है क्या? होता है? चौकीदार आपको घुसने नहीं देगा। एक बार मुझे किसी ने आमंत्रण किया कि भाई महाराज आ जाना, कोई पूजा है पाठ है। मैं पहुंच गया तो चौकीदार ने कहा कि कहाँ जाना है। हमने कहा भाई अमुक जाना है। वो जब तक वो फोन नहीं करेगा तब तक आपको हम ऊपर नहीं जाने देंगे। बुलाने पर भी हमारे वहां पर जाने की हमारी शक्ति नहीं है क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। परंतु आप जहां पर रहते हैं उसने आपको उसको अपने अपना माना है कि नहीं माना है, क्यों माना है, उसमें क्या कारण है मानने का। आपने जिस घर को अपना माना है उसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसको अपना मानते हैं? आपने उसको खरीदा है इसलिए निश्चित रूप से आपने उसकी रजिस्ट्री की है, उसका पैसा चुकाया है। वो पैसा कहां से बनाया आपने? आपने आपके पास भी कोई टकसाल है? आपके पास कोई छापखाना है? वो पैसा किसका है? वो गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ, आपने उसको ले लिया, उसको भी अपना मान लिया और उसने आपको घर खरीद लिया। वो सीमेंट आपने बनाया क्या? उसके अंदर लाइट जो आ रही वो आपकी है क्या? उसने आपने अपना मन का अभिनिवेश किया, आपने कहा कि ये मेरा है। किससे बनाया वो? ये मेरा है। आप कभी वहां पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप खंडाला के लोनावला के बंगले में कितना रहते हैं कुछ पता नहीं है, परंतु आप क्या मानते हैं कि वहां पर एक हमारा बंगला है, वहां तो और बंगले हैं। आपके मन ने मान लिया, समझो आपने बनाया भी नहीं लिया भी नहीं, और संयोग से जैसे लॉटरी लगती है वैसे किसी ने आपके नाम से लिख दिया वसीयत कि बहुत सुंदर खंडाला में एक बंगला है और मेरे मरने के बाद में वो आपका हो जाएगा। वो समझो वो देवता को प्राप्त हो गया, वो स्वर्ग में वो चला गया, उसके बाद में आप क्या मानेंगे उसको? अब ये मेरा, आपने उसको खरीदा नहीं, आपने पहले भी था और अब भी है, पहले आपने उसको अपना स्वीकार नहीं किया परंतु बाद में आपने उसको अपना स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि जो मन का मांडा वही बंधन है और जो मन से उसको आपने त्याग दिया तो कहते हैं कि मुक्तये चात्मनोमतम, आपने मन से उसको निकाल दिया, यही ये संसार है। इसलिए तो गुणेश सक्तम बंधाय गतम वा पुंसि मुक्तये, उसमें फंसे रहना ये बंधन है और विचार पूर्वक उसको छोड़ना ये मुक्ति है। भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही कि मुक्त और उसका बंधन मुक्त होना है और बंधने पड़ना है, इसका दो ही इसका मन ही कारण है और मन कारण होने के कारण आपको इसका विवेक करना चाहिए। परंतु विवेक कहाँ करे जाकर के? भगवान तो कह रहे हैं, बोलते हैं कैसा होता है घर का जोगी, हमारे यहां पर कहते हैं क्या कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, अब ये कह रहे हैं ऐसे कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। भगवान है अपने घर का बेटा है और बेटे ने उपदेश दिया, परंतु कपिल भगवान ने कहा कि हे देवी ऐसे संतों के पास जाओ, आप संतों के पास जाओ और वो संत आपको बताएंगे उस परमात्मा के विषय में, उस साधना के विषय में, उस तप के विषय में, उस क्रिया के विषय में जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और वो संतों का यहां पर मैंने कल कहा था कि संत कैसे होते हैं, संतों में कौन से गुण होते हैं, यहां पर कहते हैं कि ऐसे संतों के पास जाओ, तितिक्षवः कारुणिकाः, जिसके अंदर तितिक्षा हो, जिसके अंदर करुणा हो, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शांतः, साधवः साधुभूषणः। इस संतों के कुछ विशेष गुण बताए, तितिक्षा उनका सबसे पहले गुण है। जीवन में तितिक्षा होने चाहिए। वर्षा है, शीत है, घाम है, इसमें आपको सम रहना है। यहाँ आते हैं हमारे यहाँ के ट्रस्टीगण, बोलते स्वामी जी सब ठीक तो है ना, एसी तो बराबर चलता है ना। जो संत हैं उनको एसी हो ना हो कोई फर्क अंतर नहीं पड़ता है, परंतु आपका स्वभाव है कि आपको उनको बड़े प्रेम पूर्वक रखना है, सुविधा में रखना है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि संतों का एक गुण है तितिक्षवः, और दूसरा गुण है कारुणिकः। संत भले ही वैराग्यवान हो परंतु उनके हृदय में करुणा होती है, और करुणा किस लिए होती है? ये जो दुखी, ये जगत में जो दुखी प्राणी है उनको सुख कैसा मिले, जिसको वो दुख में सुख मान रहे हैं वास्तविक सुख कैसा मिले, तो कहते हैं कि वो करुणा होती है। सूरदः सर्वदेहिनां, सबके साथ मित्रता है। भगवान ने कहा कि भक्त कैसा होता है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टो एन केनचित्। समान रहने वाला, समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रुता मित्रता में कोई अंतर नहीं। किस प्रकार की? जिनकी भावना हो, जिनका स्वभाव हो। सुहृदः सर्वदेहिनां, इसलिए अपने यहां पर लोग उस परंपरा से चलते हैं, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे हैं। अजात शत्रुवः शांतः, दुनिया में जिसका कोई शत्रु न हो ना, ऐसे संत हो सकते हैं। अजात शत्रु का मतलब है कि अजात शत्रु अपने आप पर कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज को, है ना? महाभारत में अजात शत्रु अगर किसी का नाम है वो है इनका युधिष्ठिर महाराज। एक बार कहते सभा लगी हुई थी, और सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण भी थे। किसी ने कहा, पूछा कि प्रश्न करना चाहिए, तो दुर्योधन से कहा कि इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति निकालो जो श्रेष्ठ हो, जिसमें कोई अवगुण न हो, ऐसा कोई। तो दुर्योधन ने कहा कि सब जगह देखा, क्योंकि उसके मन में अवगुण थे, उसके मन में शत्रु बुद्धि थी। कहा कि यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई नहीं है यहां पर, सब ऐसे बैठे हुए, जो भी कहा होगा। युधिष्ठिर महाराज को कहा कि ऐसा करो, जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति निकालो, कोई दुष्ट हो, किसी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पसंद न हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं, सब सज्जन बैठे हुए हैं। जैसे मुझे यहां से लगता है कि श्रोतागण कितने कितने निर्मलता से बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार वहां पर कहते हैं कि जो जिस मन, जिसके संत के मन में ये हो कि सभी के सभी सज्जन लोग हो, कहते हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं होता है। अजात शत्रुवः शांत, अति शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। और साधवः साधुभूषणः, ये साधुओं का ये आंतरिक भूषण है। दो होते हैं साधु के, दो भूषण होते हैं, एक आंतरिक भूषण होता है, एक बाह्य भूषण होता है। आंतरिक भूषण किसी को दिखता नहीं है, तो दिखाने के लिए होता भी नहीं है। तितिक्षा करनी है, शांत रहना है, सबके समान, सबके साथ में समान व्यवहार करना है, ये दिखाने की वस्तु नहीं है। परंतु एक बाह्य भी उनका एक विशेष गुण होता है, उनका भूषण होता है, वो होता है वस्त्र, तिलक, ये वो अनेक अलग प्रकार के जो उनके जो चिन्ह होते हैं उनको ही भूषण कहा जाता है, क्योंकि वो चिन्हित हो जाए, परिचित हो जाए कि ये संत हैं। इसलिए और वो क्या करते हैं, मैं ये न भावे न मेरी भक्ति करने के लिए, तो कहते हैं कि वो भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ां। वो जो ऐसे संत होते हैं वो भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान तो है ही, हम सब मानते हैं भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारा है, तो दृढ़ उनका निश्चय, और उसके कारण उस भगवान के लिए मत कृते त्यक्त कर्माणी, मत कृते मेरे लिए वो अपने सभी के सभी कर्म त्याग देते हैं। जो संन्यास ग्रहण करते हैं उसके बाद में बोलते हैं कि कोई आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं किस लिए? वो जो एक परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए। बोलते हैं कि मेरे कारण, मेरे लिए ऐसे संत क्या करते हैं, अपने सभी कर्मों का त्याग करते हैं। और साथ साथ में इतना ही नहीं, त्यक्ता स्वजन बांधव, अपने बंधुओं को, बांधवों को, माता को, पिताओं को, उनका भी वो बंधन छोड़ देते हैं। अपने यहां पर दो प्रकार के संत होते हैं, एक गृहस्थ संत होते हैं और एक विरक्त संत होते हैं। अपने यहां पर दो परंपरा है, संतों की दो परंपरा, एक विरक्त परंपरा जिसको सन्यासी कहते हैं, जिनका अपना परिवार से वो दूर रहते हैं, और एक होते हैं सदग्रस्त। जैसे हमारे यहां बहुत से संत हुए, हमारे यहां जलाराम बापा हुए, हमारे यहां नरसिंह मेहता हुए, ऐसे बहुत अनंत अनंत संत, तुकाराम हुए, संत एकनाथ हुए, बड़े बड़े संत हुए। ग्रस्त में रहते हुए भी वह संत, और एक संत जैसे हमारे आचार्य शंकर और अनंत अनंत ऐसे आचार्य जिन्होंने अपने परिवार का त्याग किया, और परिवार का त्याग करने के बाद में उन्होंने केवल उस परमात्मा के लिए और उस परमात्मा का जो जगत है उस जगत के कल्याण के लिए कार्य किया। ऐसे दो प्रकार के संत होते हैं, एक विरक्त संत और एक सतग्रस्त संत। अपने थे ना जिन्होंने इस परम्परा को, जो ये परम्परा है भागवत परम्परा को, जिन्होंने विशालता दी, हम लोग सब जानते हैं। डोंगरे महाराज थे, घर से कोई लगाव नहीं, पत्नी से कोई लगाव नहीं, संत वृत्ति से रहना है। परंतु हम उनको क्या कहते हैं? संत कहते हैं ना, वर्तमान में ऐसे बहुत से संत हैं। ये दो परंपरा, परंतु कहते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं वो मेरे लिए अपनी कहते परंपरा को भी, अपने स्वजन बंधुओं को भी वो त्याग देते हैं। ऐसे संतों के पास जाओ, ऐसे संतों के पास जाओ और वहां पर जाकर के सत्संग करो। सतां प्रसंगान मम वीर संवितो, और वहां जाकर के मेरी कथा का श्रवण करो। मेरी कथा का श्रवण करने से तुम्हारे कानों में वो श्रवण करोगी और वो तुम्हारे हृदय में उतरेगा। भगवान की बात हम कैसे किसे सुनते हैं? भगवान को हम देख तो सकते नहीं, देखते तो हैं, पर देखने से अपने को भगवान का पता लगता नहीं। जब आप जाते होंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, तिरुपति, अनेक अनेक तीर्थ में जाते होंगे, तो कब जाते हैं? आपने कभी सुना होगा तब तो जाते हैं। पहले हम भगवान के विषय में अपने कानों से सुनते हैं और उसके बाद में वो अपने हृदय में आता है। इसीलिए आप संतों के पास जाओ और वो आपको, संत अपनी लीला आपको सुनाएंगे, और वो लीलाओं का चिंतन आप करते हुए आप मेरा ध्यान कर सकती हो। और इसलिए हे माता, आप वहां पर जाओ। और इस करते हुए भगवान ने अनेक प्रकार से और भी उपदेश दिए हैं। और ज्योति माता कहती है कि भगवान, मैं तो आबला हूं, और मैं आपकी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती हूं, इसका मुझे आप कुछ उपाय बताएं। तो हमारे कपिल भगवान उनको मुक्ति का उपाय बताते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कपिल भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ी सी हम लोग प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा उनका नाम लेते हुए आगे बढ़े।
जय हिंद। अगर सूरो अगर जाता गुणो जे ना सकड़ गाए, गुणो जे ना सकल गाय, जन्म जे संत ने आपे, जन्म जे संत ने आपे, जनेता एज कहवाए, जन्म जे संत ने आपे, जने का एज कहवाए, जन्म दे संत ने आपे, जने का एज कहवाए। काम लाभ ले चल में समझवी वांझनी नारी न काम लाभ ले चल में समझवी वांझनी नारी समझनी वांझनी नारी करण कुंज कतरो जायो आ करण कुंज कतरो जायो बनिया भगवान भीखा जन्म जे संत ने आपे जनिता एज कहवाए नयन थी नील टपके छे पुत्र नो प्रेम निहारी नयन नील टपके प्रेम निहारी पुत्र नो प्रेम निहारी छतावै रात पण दीधो आ राग पण दीदो मात में नावती माई जन्म जे संत ने आपे जनेता एज कहवाए सन्नारी होयते समझे हृदय नी वात ने मारी सन्नारी होय समझे हृदय नी वात ने मारी हृदय नी वात ने मारी जनेता ने उदर जन्म्या जनेता ने उदर जन्म्या कृष्ण ने राम अवतारी जनेता ने उदर जन्म्या कृष्ण ने राम अवतारी जन्म दे संत ने आपे जनेता एज कहवाए जनेता एज कहवाए जनेता एज कहवाए
कपिल भगवान
की जय।
भगवान कपिल का अवतार सांख्य योग के प्रवर्तक है। भगवान कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक, संख्या प्रकृति और पुरुष इसका विश्लेषण करने वाले हैं। ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसका दोनों का ही बड़ा सुंदर विश्लेषण भगवान कपिल जी करते हैं। यत् त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदसतात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् विशेषं विशेषवत्। ये जो प्रकृति है, जो व्यक्त और अव्यक्त जो आप हम लोगों को देखने में आता है, त्रिगुणात्मक ये जो संसार है, इसको जब कार्य कारण रूप से हम लोग जो देखते हैं उसमें, उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति में पंचभिः पंचभिः ब्रह्म, उसमें पांच पांच व्यक्ति वहां पर आप लोगों को विशेष उनके गुण दिखते हैं। कहते हैं कि जो पंच महाभूत, आपने यहां पर गीता में भी कहा कि भगवान ने भी उसकी भी प्रकृति का वर्णन किया है। यहां पर कहते हैं कि जो पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ऐसे जो पंच तत्व हैं, ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। हाँ, तो पंच महाभूत और उसकी जो है पंच तन्मात्राएं, रस है, गंध है, रूप है, स्पर्श है, किस प्रकार की पंच तन्मात्राएं, और साथ साथ में ये जो पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया ऐसे, और पंच महाभूत, इनके साथ साथ में एक हृदय जिसमें चार प्रकार से विभक्त होता है, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये हमारा जो हृदय है, और इसके साथ साथ में इसके द्वारा कहते हैं कि ये जो 24 तत्व ये प्रधान प्रकृति है। कौन से हैं? पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच प्राण, पंच जो हमारे यहाँ पर तन्मात्राएं हैं, और साथ साथ में ये चार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व प्रधान प्रकृति है। और उसमें कहते हैं कि जो एक काल है ये 25वां तत्व है, ये सब काल में होता है। जो भी ये प्रकृति है वो काल के बिना नहीं रह सकती है। हम लोग जो बैठे हुए इस समय, हम काल में ही बैठे हुए हैं, इसलिए प्रधान तत्व काल को भी माना है हमारे कपिल भगवान ने, और उसको आपको उसकी विवेचना करनी चाहिए, और विवेचना करने के बाद में एक आपको उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहते हैं कि इतस्तत्वम गुणः स्वच्छम शांतम भगवत पदम, कहते हैं कि एक तत्व है जिसको हम लोग उनको भगवत तत्व कहते हैं, और उसी को वासुदेव कहते हैं कि जब चित्त निर्मल होता है तब उस परमात्मा का हमें अनुभव होने लगता है। इस प्रकार का अनेक अनेक प्रकार से भगवती अपने माँ का उन्होंने माँ को उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में कहा कि भगवती आप ऐसा क्या करो कि थोड़ा सा योग भी कर लिया करो। योगश लक्षणम वक्षे, कहते हैं कि ये सब करने के लिए थोड़ा सा योग करना पड़ेगा। यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये होना चाहिए ना। यम नियम कहते हैं कि आपको करने से आपका जो चंचल मन है वो थोड़ा शांत होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा, जैसे चंद्र का जो है प्रतिबिंब आप जल में देखना चाहो और जल वहां पर अस्थिर हो तो वहां पर चंद्र का जो प्रतिबिंब है वो ठीक ठीक नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जो परमात्मा का जो प्रतिबिंब आपके हृदय में लाना है, उसके लिए मन को पहले आपको शांत करना पड़ेगा। इसलिए नियम संयम से रहते हुए योगश्च लक्षणम वक्षे सबीजेश्च निपातये, कहते हैं कि उसमें भगवान ने कहा कि वो योग के द्वारा आप उसको पूरक कर सकते हैं, उसको आप साध सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी है उसमें कैसे जीवन में रहना चाहिए, परंतु यहाँ कहते हैं कि प्राणस्य शोधन मार्ग, जो प्राण को शोधन करने के लिए, निर्मल करने के लिए अपने यहाँ पर प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम क्यों करते हैं? जब हमारे जो ब्राह्मण जब आपको कोई कर्म कराते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप प्राणायाम के द्वारा आपके मन को स्थिर करो। प्राणायाम करने के बाद में, और उसमें प्राणायाम का जो एक क्रम है, रेचक, पूरक और कुंभक, पहले पूरक भी कहते हैं, पहले श्वास को लेना, फिर उसको कुंभक के समान वापस स्थिर करना, और उसको रेचक करना, उसको छोड़ना, गति को करना। गति जो है आप पहले श्वास लेंगे, उसको रोक के रखेंगे, परंतु ऐसे केवल उसको रोकना और छोड़ने के लिए राम नहीं है, उस समय आपको उस मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आप कर रहे हैं प्राणायाम और आपका मन गया है कहीं और, मन आपका इसलिए अपने यहाँ पर उस समय स्मरण का भी वहां पर विधान कहा गया है। जब आप लोग कोई भी हम लोग जब प्राणायाम करते हैं उसकी ओंकार की ध्वनि के साथ में प्राणायाम अगर करेंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। ये अपनी माँ को कपिल भगवान सुना रहे हैं, हम आपको नहीं बतला रहे हैं, हम तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। जो भगवान कपिल ने अपने माँ को बताई वही बात यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ। और उसके बाद में आप उस अपने प्राणों को शोधन करने के पश्चात आप धीरे धीरे उन प्राणों को आप उसको जोड़ेंगे और फिर उस समय आप अपने उस हृदय में उस शुद्ध तत्व परमात्मा उसका जब ध्यान करेंगे तो वो आपका वो परमात्मा आपके हृदय में आकर के उसका आपको ध्यान होगा। और उस समय माँ कहती है कि भगवान आपने ये ध्यान की बात तो कही कि आप तो मेरी अवस्था हो गई है, अब क्या ध्यान करूंगी, अब शरीर जब क्षीण हुआ हो, कहें कि जैसे राजेश भाई बैठे हैं वैसे पलसी मार के बैठो तो लोग बोलेंगे आजकल ये घुटने दर्द करते हैं ना इसलिए समस्या है। पहले सत्संग में ऐसी कुर्सियां नहीं होती थी, जब हम लोग बचपन में देखते थे तो सत्संग में कुर्सी नहीं होती थी, आजकल सत्संगी आती है, सत्संगी लोग आते हैं तो बोलते हैं घुटनों की तकलीफ है तो इसलिए कुर्सी हो तो ज्यादा अच्छा, ऐसे बैठ तो सकते हैं लेकिन उठ नहीं पाएंगे, फिर फायदा क्या, आपको उठाने के लिए किसी को रखना पड़ेगा। तो जब अवस्था हो जाती है उस समय कहते हैं कि कुछ सरल मार्ग बताओ। भगवान ने कहा कि मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं, तुम भक्ति करो, भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, भक्ति करो। तो चार प्रकार के भक्त होते हैं, एक बोलते हैं कि ये तामस भक्त होता है, यहां पर कहा है, एक होता है तामस भक्त, वो तामस भक्त क्या करता है, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए भगवान की वो प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरा पड़ोसी है ना बड़ा परेशान करता है उसको आपको सिखाओ, ये भी भक्ति है। यहां लिखा है दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए जो भक्ति की जाती है, अपने यहां पर है ना जारन मारन उच्चारण कुछ होता है ना, कहते हैं कि ऐसी जो भक्ति करता है कोई वो तामस भक्त है। दूसरा बोलते एक राजस भक्त होता है, तो राजस भक्त क्या चाहता है, कहते हैं विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जयी, बोलते हैं क्या हम भगवती से क्या मांगते हैं, जब चंडी पाठ करते हैं कि एक उसमें आता है ना मंत्र आता है रूपम देही हम सुंदर हो जाए रूपम देही जयम देही यशो देही दशो दिशाओं में यशो, ये मांगते हैं ना हम लोग, ये राजस भक्त है। ऐश्वर्य चाहिए हमें, यश मिले कीर्ति मिले, इसलिए राजस भक्त क्या करता है भगवान की भक्ति करता है। और भगवान की भक्ति करने वो भी भक्त है, भगवान कहते हैं कि वो भी मेरा भक्त है, ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरा भक्त नहीं है, वो चाहे वो तामस भक्त है राजस भक्त है। और एक होता है सात्विक भक्त, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, वो भेदभाव रहित होकर के मेरी भक्ति करता है, वो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता है, ऐसा जो है वो भक्त सात्विक भक्त, ये तीनों भक्त हैं। और आप कहते कि और एक भक्त होता है, यहाँ पर चतुर्थ भक्त की बात कही है कि एक भक्त ऐसा होता है वो कुछ नहीं मांगता है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, ना वो सालोक्य मांगता है, ना वो सालोक सादृष्ट मांगता है, वो सामित मांगता है, ना वो सारूप्य मांगता है, ना वो सायुज्य मुक्ति ही मांगता है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। जो सात्विक राजस और तामस से परे का भक्त है वो शुद्ध गुण शुद्ध हृदय वाला भगवान का भक्त, वो तो केवल निष्काम होकर के परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा को चाहता है। किस प्रकार के उन्होंने कहा कि हे माता ऐसे अनेक प्रकार के भक्त हैं और तुम्हें तो मुझे हम सर्वेषु भूतेषु मैं सभी भूतों में मैं विराजमान हूँ, मैं भूतात्मा व्यवस्थितः, इस प्रकार का भगवान का आप उन परमात्मा का आप भजन करो, उनकी आराधना करो। और फिर कहा कि ये जो प्रकृति में हम लोगों को जड़ पदार्थ दिखते हैं, बोलते उससे श्रेष्ठ ये तृणादि होते हैं, तृणादि होते हैं जो घास फूस होता है, उससे श्रेष्ठ कुछ जीव होते हैं, उससे ज्यादा फिर थोड़ा सा घूमने फिरने वाले जो प्राणी होते हैं उससे श्रेष्ठ कहते हैं कि फिर मनुष्य होता है। मनुष्य में भी जो साधारण लोग होते हैं उससे श्रेष्ठ थोड़ा सा ज्ञानी होता है, और ज्ञानी में भी सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो विशुद्ध अंतकरण वाले जो संत होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए तुम्हें उनके पास में जाकर के ऐसे महापुरुषों से तुमको भगवान का कैसे स्मरण करना चाहिए, वहां आप अगर सीखें तो इस प्रकार आपको देह और गेह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मां को देह और गेह से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान का ये सब के सब उनका उपदेश चल रहा है। और बोलते हैं कि देखो ये जीव की बड़ी वृत्ति होती है, जीव कहाँ से आता है, कैसे आता है, कर्मों के द्वारा जीव प्रकट होता है और फिर कर्म करता है और फिर कर्मों में ही विलीन हो जाता है। इसलिए वो जो कर्म है अनेक प्रकार के, ये जीव की कैसी योनि उसको प्राप्त होती है और उस योनि के द्वारा वो जीव क्या क्या सुख और दुख भोगता है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की भगवान कपिल अपने माँ को उनको उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद में कहते हैं कि माँ अब तुमने उपदेश ग्रहण कर लिया है, मेरा जो कर्तव्य था वो पूर्ण हो गया। देखो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं जीवन में, अपना कर्तव्य पूरा होने के पश्चात अपने को उससे निवृत्ति लेनी चाहिए, और जब आपकी निवृत्ति हो जाती है तो आप उस संसार का सही सही आप निर्णय कर पाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को मैंने पूर्ण कर दिया है, और भगवान ने कहा कि अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। और उन्होंने अपना कमंडल उठाया और वहां से वो पूरब की ओर चलते हैं भगवान कपिल, और जाते हुए मां विभूति उनको देखती है। थोड़ी देर के लगता है कि ये मेरा पुत्र यहां से प्रस्थान कर रहा है, थोड़ी देर उनके मन में ये लगता है कि मेरा पुत्र जा रहा है, परंतु उसी समय उनके मन में जो उपदेश दिया था वो सब की सब उनके उपदेश आता है, उनके ध्यान में आता है और एकाग्रचित होकर के वो उस समय वहां पर समाधि लगा लेती है। और समाधि लगाने के बाद में उस समय वो दुनिया को समस्त भुला देती है और केवल परमात्मा का चिंतन करते हुए भगवान कपिल वहां से निकल जाते हैं और वो जाकर के गंगा सागर के तट पर जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। और मां विभूति बिंदु सरोवर के किनारे बैठ करके सिद्धपुर में वो ध्यानस्थ हो जाती है। सिद्धपुर बिंदु सरोवर, और वहां पर उनको किसी प्रकार का कोई भान नहीं है कि मैंने वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं, भगवत चिंतन में लग जाती है। उनकी जो काया थी वो काया वहां पर तपस्या करते करते वो जलरूप हो गई और वहां से एक नदी का प्रवाह हुआ। ऐसे हमारे शास्त्र हैं, जो पुत्र ने अपने पिता को भी उपदेश दिया कि आप जाओ संन्यास ग्रहण करो, और माता का भी वहां पर उनको भी मोक्ष की प्राप्ति करा दी और स्वयं उस तपस्या में चले गए। इस प्रकार का हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये बहुत इसका है ही नहीं उसके आसपास में। इसलिए हम लोग उसको जब श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातें आती है कि हमारे पूर्वजों ने अंतिम समय में छोड़ दिया, पहले आप संसार करो, संसार को आप संसार में रहो, संसारी कार्य करो, परंतु जब जाना हो तो विचार पूर्वक जाओ। इसलिए हमारे यहां पर चार आश्रमों की स्थापना की है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो आप, खूब विद्या अध्ययन करो, उसके बाद में गृहस्थाश्रम में आपको जो भी गृहस्थ के कार्य है वो सब के सब करो। और उसके बाद में जब गृहस्थ करते करते वनप्रस्थ, उसको वनप्रस्थ बोलते हैं, वन की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि जो हमने धीरे धीरे जिसका हमने संग्रह किया है उसको धीरे धीरे छोड़ना है। एक साथ नहीं छोड़ता, एक साथ कब छोड़ता है, जब आपको पहले विवेक हो जाए। तो विवेक हो जाएगा तो आप गृहस्थ में जाएंगे नहीं। इसलिए हमारे यहां पर दो परंपरा है, हमारे यहां पर सन्यासियों की दो परंपरा है। अगर सन्यासी सन्यास को लेना चाहता है या तो ब्रह्मचार्य से सीधा सन्यास ले, जैसे भगवान शंकराचार्य ने लिया, या तो गृहस्थ होने के बाद में, और गृहस्थ छोड़ करके सन्यास नहीं लेना। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसा है, और आपको वैराग्य हो गया और चल दिए, ऐसे लोगों को हम सन्यास नहीं देते हैं। पहले अपना गृहस्थ धर्म का निर्वाह करो और उसके बाद में आप वानप्रस्थ बनो। जो आपने गृहस्थ आश्रम में जो आपने संग्रह किया है उसको मन से आप परित्याग करो, और परित्याग करने के बाद में उसके बाद में सन्यास ग्रहण करो। और सन्यास का मतलब यह है कि केवल जगत में उस परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, और सर्वत्र परमात्मा है, जहां पर भी रहो। इसलिए हमारे यहां पर एक होता है हंस, जैसे कल आपको कहा था मैंने कि ब्रह्मा जी ने चार प्रकार के सन्यासी बनाए, एक कुटीचक, एक बहुउदक कुटिया बना के रहने वाले सन्यासी, एक तीर्थ के पास में रहने वाले सन्यासी, एक हंस और एक परमहंस, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे चार प्रकार के सन्यासी बनाए। तो इस प्रकार के सन्यास की जो हमारे यहाँ पर धारणा है और अपने यहाँ पर सभी के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो और वानप्रस्थी हो, अगर आप नहीं करेंगे तो भी काल है वो सन्यास देगा, देगा कि नहीं देगा, और कब देगा कुछ पता नहीं, लेकिन देगा कि नहीं देगा वो निश्चित है। आपको इस संसार को सन्यास लेने का मतलब संसार को छोड़ना। अब संसार में हम कब तक रहेंगे, जब तक वो चाहेगा, फिर आपको छोड़ोगे कि छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले छोड़ने का अभ्यास करना। और अभ्यास करने के लिए हम लोग भगवान का थोड़ा सा भजन करें, और उसके बाद में श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन
प्रकाश। फिर से भगवान का नाम स्मरण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हरि
बोल,
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सतगुरु
नारायण 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 सतगुरु नारायण सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
हरि बोल
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
हरि गुरु
नारायण 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 ध्यान।